ओम शांति। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रश्न नंबर 15 सरल चित्त की निशानी क्या है। तो पहले बाबा के शब्दों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उसके बाद चिंतन करेंगे। जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त, हवा निकल रही है। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी की वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंड होगा, कोई भी बात की कमी नहीं दिखाई देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी, मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि अभी नहीं कर सकते। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल मिलाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। सब बातों में सैंपल बनने से पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है, ऐसे कभी कभी किसी बात में हम कहते हैं कि इसमें अभ्यास नहीं है। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है, ये हुई कमाई। ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है, हर बात अन्य के आगे सैंपल बन कर दिखाना, हर बात में अन्यों के आगे सैंपल बन कर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, ये है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। ये मुरली है 21 जनवरी 1971। तो कल जैसे मंगलास की पड़ी थी एक रस रहने के लिए, कैसे निरंतर मंगलास में रहें, और आज है सरल चित्त की निशानी क्या है। तो इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ हमारा सरल रूप से चले, सहज रूप से चले, तो उसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न बातें बताई है। एक तो बताया कि सरलचित माना अर्थात परिभाषा दी है, सर्वचित अर्थात जो बात देखी सुनी की उसमें क्या हो, सार युक्त हो, सार भरा हुआ हो, टू द पॉइंट हो, और सार को ही उठाए, जो भी हमें सुन रहे हो उसमें भी सार को उठाएं, और जो बात व कर्म करें उसमें भी सार भरा हुआ हो, जो भी कर्म कर रहे हैं वो भी सार युक्त हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देगा। सार अर्थात पानी को ना बिलोते रहें, पानी को बिलोंगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से बाबा कह रहे उसमें सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा, और जो सरल पुरुषार्थी होते हैं वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देते हैं। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा। अब उसकी निशानी दिखाई है, एक तो और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बनाएंगे और सभी बातों में ऑलराउंड होगा, और कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी। किसी भी क्षेत्र में उतर जाएगा तो कोई ना कोई अपने विशेषताओं के अनुसार वहां मददगार जरूर बनेगा। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी, मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि अभी ये नहीं हम कर सकते हैं। ये एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल मूर्त बन सकते हैं। सब बातों में सैंपल बनने से फिर पास भी डाउनर भी बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो कि अभ्यास नहीं है, ऐसा कभी कोई भी बात में कहते अभ्यास नहीं है, वो अलग बात है। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है, ऑलराउंड बनना ये है कमाई। हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, ये है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। तो यहाँ यहाँ कौन कौन बैठा ऑलराउंड विशेष? चिमन भाई बैठे हैं। काम भी फिट हो जाते। तो ये थी कि जो सरलचित पुरुषार्थी होंगे तो उनकी निशानियां बताई बाबा ने, परिभाषा बताई। उसके अलावा सरलचित जीवन में बनने, क्योंकि अगर जब तक हमारा हृदय सरल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, सेवाओं में भी उतना सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो सरल चित्त बनने के लिए हमको कौन कौन सी धारणाओं पर और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आत्माओं में अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। इतने बड़े संगठन में हम रहते हैं, चाहे लौकिक में भी रह रहे हैं, फिर भी सेंटर में संबंध संपर्क में आते हैं, बाहर जाते हैं, सर्विस पर जाते हैं तो भी आते हैं संबंध संपर्क में। तो इजी नेचर जो है ये हमारी सफलता का वास्तव में एक अहम सीढ़ी है। अगर इजी नेचर नहीं है तो क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर मन में चलते रहते हैं। और इसके लिए कौन कौन सी चीजें बाधक हैं जो सरल पुरुषार्थी हम नहीं बन पा रहे हैं या अपने स्वभाव को सरल नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, बाधक हैं। तो एक तो देखा जाता है जैसे 69 की मुरली में था कि जो व्यक्ति अंदर और बाहर दूसरा होता है वो बहुत खौफनाक होता है, एक मुरली में है। तो दोहरा व्यक्तित्व तो नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ऐसे नहीं हो कि हमारे बोल तो कुछ और है लेकिन कर्म क्षेत्र पर कुछ दूसरा दिखाई दे रही है, हमारे सोच तो कुछ और है, हमारे संकल्प तो कुछ और हैं लेकिन प्रदर्शित कुछ और ही रूप में हो रहे हैं, हम सुना तो कुछ और रहे हैं लेकिन धारणाओं में है ही नहीं है। तो एक दोहरे व्यक्तित्व से हमको पहले तो स्वयं को रियलाइजेशन होना जरूरी है कि सचमुच हमारे में ऐसा है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, भले शुभ भावना का हम प्रदर्शन करें, जैसे बाबा ने कहा तुम बच्चे शुभ भावनाओं में एक्सपर्ट हो गए, तो क्या वास्तव में हम शुभ भावनाओं में इतना एक्सपर्ट हो गए? सबके प्रति शुभ भावनाएं हमारे मन से निकलती हैं या मन वैसे अभी कुटिल है, जटिल है, दूसरों के प्रति संवेदना नहीं है या संवेदना शून्य मन है? तो उस तरीके से हम पहले अपने मन को हमें जांच करनी होगी अपने मन की कि हमारा दोहरा व्यक्तित्व कहीं हमारे पुरुषार्थ में बाधक तो नहीं बन रहा है, स्पष्टता नहीं है। तो ये पहली बात, दोहरा व्यक्तित्व। और दूसरा, सरल पुरुषार्थी या सरल स्वभाव में हमारा और क्या बाधक बनता है? अहंकार। अहंकार जो है छोटी छोटी बातों में है, बहुत सारा जो मैंपन अंदर है, जो भगवान ने संडे की मुरली में कहा कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो वास्तव में कहीं मैं जो अंदर में बैठा हुआ है कहीं उसका हम पालन पोषण तो नहीं कर रहे हैं, उसको हम रियलाइजेशन नहीं करके बल्कि और ही धीरे धीरे छोटे छोटे रूप से अपनी विशेषताओं को हम दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और दूसरों को दबा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो अहंकार भी हमारे पुरुषार्थ को सरल नहीं बनाएगा, हमारे स्वभाव को सरल नहीं बनाएगा। तो सरल चित्त बनने के लिए अहंकार जो है ये इससे भी मुक्त होना पड़ेगा। अहंकार को कहीं हमने अपना कोई शस्त्र तो नहीं बनाया, अपना बचाव का तरीका तो नहीं बना रखा है किसी को डरा धमका के ठीक है उस समय तो दब जाता व्यक्ति, लेकिन उसके मन से निकलने वाले जो संकल्प है, भावनाएं हैं, वो भी हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाती है। तो अहंकार भी वास्तव में हमारे पांव पर ही हम अपने आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसको भी हमको देखना होगा कि अहंकार से भी हमको मुक्ति है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से। बाबा ने कहा ना 3-4 दिन पहले की मुरली से, अहंकार से ही सब विकारों का जन्म होता है, देह अहंकार, 5-6 दिन पहले मुरली में था। तो ये तो दूसरी बात, अहंकार से मुक्ति, और इसकी जांच भी स्वयं को ही करनी पड़ेगी। उसके लिए अंतर्मुखता, कल की मुरली में जो था, कल हमने प्रश्नोत्तर में जो यहाँ डिस्कशन की थी अंतर्मुखता, तो जितना हम अंतर्मुक्ति होंगे तो अपने अहंकार को भी हम पहचान सकेंगे, क्योंकि उसके रचना भी तो हमने की है ना, और अपनी रचना को छोड़ना सहज नहीं होता है, बहुत प्यारी लगती है। तो इसी तरह से इसको जांच करके उसको समाप्त करने का भी प्रयास करना होगा। अपनी रचना का गला घोटना को घोट सकता है, आजकल संसार में तो घोटते हैं ना, तो उसी तरह से हमको बनना पड़ेगा थोड़ा। और तीसरा है, सरलता जीवन में बढ़ती जाए उसके लिए व्यर्थ के दरवाजे जो हमने बना के रखे, अनेक प्रकार की खिड़कियां हैं, कहीं ना कहीं वो व्यर्थ से हमारी प्रीत हो चुकी है, व्यर्थ से हमारा लगाव हो गया है, अटैचमेंट हो गई है। थोड़ा भी अगर कहीं ना कहीं समय मिलता है, थोड़ी बात चलती है किसी के बारे में, तो उस बात को हम सहारा न देने के बजाय उसको समाप्त करने का प्रयास करें। दो में भी अगर कोई बात हो रही है, तीसरा उसमें बोल पड़ता है और बीच में उस बात को हम अग्नि में जैसे तेल डाल रहे हैं तो वायुमंडल को भी खराब कर रहे हैं, तो भी पुरुषार्थ हमारा सरल नहीं होगा। तो सरल पुरुषार्थ हमारा हो और स्वभाव सरल हो, ताकि हम स्वयं को भी सरल चित्त बना सकें और दूसरों को भी सरल चित्त बना सकें। तो इस चीज का भी ध्यान हमको बहुत रखने की जरूरत है कि व्यर्थ से हमारा संपूर्ण रूप से किनारा होने की और हमारे कदम अग्रसर होते रहे। और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारा जो चिंतन है उसको श्रेष्ठ बनाना होगा। चिंतन तो चलता ही, चाहे व्यर्थ चले असमर्थ चले, लेकिन श्रेष्ठ चिंतन का भी जो हमारा प्रयास है तेज होना चाहिए। एक माना क्रांतिकारी आंदोलन, जिस तरीके से चिंतन हमारा आगे बढ़ता जाएगा तो नेचुरली उससे जो हमें प्राप्ति होगी तो व्यर्थ से स्वतः ही हम मुक्त होते जाएंगे, व्यर्थ से वैराग्य आता जाएगा। क्योंकि एक बार अगर हमने स्वाद चख लिया अच्छी चीज का जो हमारे मन को अच्छी लगती है, तो नेचुरली जो पुरानी चीज है व्यर्थ है, जिससे हमने अनेक बार धोखा खाया है, हमारे जीवन में प्रगति नहीं हुई है और ही हमारा जो पुरुषार्थ गिरता गया है, जो हमारे मानसिक स्थिति कमजोर होती गई है जिस व्यर्थ से, तो स्वतः ही उससे वैराग्य आएगा और श्रेष्ठ चिंतन के प्रति हमारी विचारधारा जो है स्वतः आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसका प्रभाव नेचुरल हो जाएगा। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा श्रेष्ठ चिंतन रुक क्यों जाता है, क्यों नहीं हम कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं तो हमने व्यर्थ को पकड़ के रखा हुआ है। जब हम व्यर्थ का चिंतन कर सकते हैं तो श्रेष्ठ क्यों नहीं कर सकते? और वास्तव में मूल स्वभाव तो आत्मा का तो वही है ना, श्रेष्ठ विचार। ये तो जो है थोड़े समय का लेपशेप है, जो आत्मा के ऊपर व्यर्थ का लेपशेप है, लेकिन मूल स्वभाव में या मूल रूप से आत्मा के जो गुण हैं वो तो वही हैं, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, रहम, सब चीजें, ज्ञान। तो इन चीजों से को भी हमको अपने ऊपर स्वयं ध्यान रखना हुआ कि क्यों हमारा जो चिंतन को एक ग्रहण सा लग गया हुआ है, क्यों हमारे कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों हमारा चिंतन रुक रहा है, तो इसके ऊपर भी अटेंशन रखेंगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। और एक बात सरलता के लिए, संगठन बहुत महत्व रखता है इसमें। हमें कोई भी सेवा मिलती है, एक तो हम व्यक्तिगत रूप से जो जो सेवाएं हमको दी गई है उनको हम निभाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम संगठन में रहते हैं, अगर कहीं से कोई हमारे से हेल्प लेना चाहता है या जहां हम हेल्प कर सकते हैं, तो अगर हम वहां जाते हैं कोई भी सेवा का मौका मिलता है तो हमको वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा हमको बहुत कुछ सिखाती है। सेवा हमारे संस्कारों को जैसे नरम कर देती है, सेवा में ही जैसे हमारे अंदर में जो कमजोरियां हैं उनको समाप्त करने के अनेक प्रकार के तरीके मिलते हैं, अलग अलग विधियां मिलती हैं। तो उस सेवा के क्षेत्र में जाने से, संगठन में जाने से, अनेक आत्मों के संबंध संपर्क में आने से भी अपनी हम मानसिक कमजोरियों को समाप्त कर सकते हैं, और उस सेवा करने से जो दुआएं मिलेंगी, जो हमारी पुण्य की कमाई जमा होगी, जो बल मिलेगा, उससे वह हमारा पुरुषार्थ सरल होता जाएगा, उसमें भी हम अपने स्वभाव को भी सरल बना सकते हैं। और संगठन में वास्तव में मूल रूप से अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, लेकिन सभी को अनुभव होगा अगर संगठन में हम रहते तो हमारे स्वभाव संस्कार में बहुत सारा परिवर्तन आता है, इसके सभी अनुभव होंगे। अगर हम एक दो के गुण उठाते रहें, एक दो के गुणों का चिंतन करते रहें, तो भी हम अपने पुरुषार्थ को सरल बना सकते हैं। और सबके प्रति अपनेपन की भावना, जब तक हमारे मन में सबके प्रति अपनेपन की भावना नहीं है तो भी हम सरल चितने होंगे। जैसे परिवार होता है तो परिवार में सब अपने लगते हैं, तो वहां किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि अपने परिवार का हिस्सा है, जैसे एक ही हाथ की उंगलियां हैं, तो उन सबको हम सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही पूरा परिवार है, पूरा संगठन है, सबके प्रति अपनेपन की भावना हो, समत्व दृष्टिकोण हो, तो उसी प्रकार से हमारा जो व्यवहार भी चलेगा तो भी हम सरल चित बन सकते हैं, तो भी हमारा पुरुषार्थ सरल रूप से हो जाएगा। और नेक्स्ट है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनना होगा, क्योंकि अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, अनेक प्रकार की बातें आएगी जो हमको समानी पड़ेंगी, सहन भी करना पड़ेगा, उनका सामना भी करना पड़ेगा। तो जितना जितना हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी तो भी हम सरल पुरुषार्थी बनते जाएंगे, तो भी हमारे चित्त जितना मैला हो चुका है, कलुषित हो चुका है, तो भी वो साफ चित्त होता जाएगा, तो दूसरों की बात को सहन करना भी आराम से हम सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सादगी प्रिय, सरलता का मुख्य एक लक्षण भी है सादगी। जितना हम सादगी रहते हैं तो हमारे जो मन के विचार है वो बिखरते नहीं है, नहीं तो हम जितना अगर विस्तार बना के रखते हैं तो हमारे मन के संकल्पों की एनर्जी भी उन चीजों से लगी रहती है, और वही चीजें हमारे मन की संकल्पों की एनर्जी को बांध के रखती है। तो जितनी हमारी सादगी होगी तो स्वतः हम इस बॉडी से, इस देह की दुनिया से, इस देह के संसार से, पुरानी दुनिया से डिटैच होके परम सत्ता से हम अपना कनेक्शन जोड़ के हम अपने जो आत्मा के जो मूल संस्कार है उनका अनुभव करते हुए सरल पुरुषार्थ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है संकल्प और वाणी पर संयम, बहुत जरूरी है। कोई भी बात सामने आती है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करें हम उसकी, क्योंकि अगर तुरंत हम प्रतिक्रिया करते वाणी पर संयम नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। महाभारत का परिणाम क्या है, वाणी का तो परिणाम है। तो इसी तरह इस जैसे वाणी के ऊपर भी संयम है, ऐसे हमारा संकल्पों के ऊपर भी संयम हो। ऐसे नहीं संकल्प के पीछे एक के पीछे चलते जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुरली थे ना, संकल्प हमारे धैर्यवत होने चाहिए, है ना, 82 की मुरली। अगर हमारे संकल्प धैर्यवत नहीं है तो बाबा कहते जैसे सारी एनर्जी खत्म होती जाएगी, ऐसा अनुभव करेंगे, माथा भारी भारी लगेगा। और हमारे संकल्प धैर्यवत हैं तो हर संकल्प वो सिद्धि स्वरूप होगा, हर संकल्प में शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, और वो संकल्प जो चलेगा वो हमारे पुरुषार्थ को सहज करता जाएगा, तो भी हम सरल पुरुषार्थी बनते जाएंगे अगर हमारा अपने संकल्पों के ऊपर संयम है। तो कौन से हम संकल्प कर रहे हैं, कौन से संकल्पों का भोजन आत्मा को दे रहे हैं, आत्मा उन शुद्ध संकल्पों से शक्तिशाली होती जाएगी तो नेचुरल रूप से हमारा पुरुषार्थ भी सहज होता जाएगा। नेक्स्ट है जो बाबा ने कहा कि जो सरल पुरुषार्थी होते हैं वो हिम्मत नहीं हारते कभी। तो इस ब्राह्मण लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हार रही है, किसी भी दिनचर्या जो भी हमारी दिनचर्या बनी है सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स की, उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी है। गिरेंगे अनेक बार लेकिन फिर चढ़ना नहीं छोड़ना कभी भी, कहीं ना कहीं। तो जो स्पाइडरमैन की जो कहानी दिखाते हैं या वो जो मकड़ी चढ़ती है, तो क्या था वो किंगरूस है, 7 बार। तो यहां तो कितनी बार बाबा ने कहा अंत तक माया तो अपना काम करेगी। तो जब माया दृढ़ता से लगी हुई है तो हम भी तो लगे रहे ना। तो इस लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में, ब्राह्मण जीवन में हिम्मत को नहीं छोड़ना है। हिम्मत हमारे जैसे एक संस्कार बन जाए, सबसे बड़ी हिम्मतवान माया है, हाँ, उससे हमको सीखना। जैसे वो हिम्मतवान है ऐसे अभी हम भी, वो हमको हिम्मतवान बनाने के लिए आ रही है, एक पाठ पढ़ाने आ रही है। तो इसमें हिम्मत नहीं आनी है। नेक्स्ट है अगर हमारा संस्कार सरल नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ सरल नहीं हो रहा है, तो पवित्रता के तेज को बढ़ाना है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन की परिवर्तन की प्रक्रिया का एक आरंभिक कदम है ये। तो अगर हमारा ये आरंभिक कदम जो है, हमारा जो फाउंडेशन है, अगर ये हमारा कमजोर होगा तो भी हमारे अनेक प्रकार के जो विकारों के संकल्प है वो भी हमारे पुरुषार्थ के बढ़ते कदमों को जो ऐसे लड़खड़ा देंगे, रोकेंगे, है ना। तो मन में पवित्रता के संबंधित विचार जितने से जितने, चाहे अपने तन के प्रति पवित्रता के, चाहे हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, चाहे प्रकृति के प्रति है, जितने भी हम पवित्र संकल्पों से अपने मन को परिपूर्ण रखेंगे तो भी हम अपने पुरुषार्थ को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। मन में किसी प्रकार के कोई विकारी विचार या जहरीले विचार तो नहीं है, क्योंकि अमृत वहीं टिकेगा, बाबा कहते हैं जब जो बुद्धि रूपी पात्र वो भी पवित्र होगा। तो इस तरीके से हम अपने पवित्रता के तेज को भी बढ़ाना है। और दूसरा, संगठन में जो हम सरल नहीं बन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे की जो विशेषताएं हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, उनको हम कार्य में नहीं लगा रहे हैं। तो सामने वाला भी जो हमारे संबंध संपर्क में जब आते हैं तो उनकी विशेषताओं को हम इग्नोर नहीं करें, कहीं ना कहीं उनको हम याद रख के कहीं ना कहीं उनको कार्य में लगाएं, उनको प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाएं, तो भी जो उनके मन से निकलने वाले जो है दुआएं हैं तो भी हमारे पुरुषार्थ को सरल बना सकती है। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि किसी के गुणों को इग्नोर नहीं करना है, किसी की बात को इग्नोर नहीं करना है। हाँ, सामने वाले की बात कभी लगती है खराब है, और हो भी सकता है वो खराब ही हो, लेकिन तुरंत हम उसके ऊपर इग्नोर नहीं करें, समय मौका आने पर वो अपने आप स्वीकार कर लेगा। एडजस्टमेंट नेचर बहुत जरूरी है। जो प्रश्न आपने पढ़ा था 13 नंबर प्रश्न, बालक सो मालक वाला, तो ये बहुत जरूरी है। कहां बालक बनना है, कहां मालक बनना भी बनना है, इस बात का भी हम सबको ध्यान रखना होगा। अगर संगठन में किसी चीज का निर्णय फाइनल हो जाता है और उनकी मानी जा रही है, हमारी नहीं मानी जा रही है, तो बालक बनने के बाबा कहते उसको स्वीकार कर लो, ज्यादा क्यों क्या के प्रश्न में जाओ, क्योंकि ड्रामा तो एक्यूरेटी चल रहा है, होना तो वही है जो उसमें है, और लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ को ड्रामा अनुसार तेज करना है। तो एडजस्टमेंट नेचर। और नेक्स्ट है विस्तार से मुक्ति। जो भी हमने विस्तार बना के रखा हुआ है, जितने भी संबंध संपर्क में है या सेवा के क्षेत्र में है, टू मच विस्तार में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पुरुषार्थ खो जाता है। तो पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए विस्तार संकल्पों का, वाणी का, कर्म का, संबंध संपर्क का, जो भी जितना हमने विस्तार बढ़ाया है उसको समेटने का भी समय चल रहा है, तो इसको भी हमको करना है। और है जीवन हमारा योग युक्त हो जाए। केवल हमारा योग जो है वो सवेरे शाम का वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको प्रयास करना है निरंतर योगी जीवन, क्योंकि कर्म में योग की वास्तव में बहुत सारी जरूरत पड़ती है। योग युक्त अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्मों में फल भी अच्छा मिलता है, उसमें रस भी बैठता है, कर्म करने में मजा भी आता है, परिणाम भी अच्छे निकलते हैं और एटमॉस्फेयर भी वैसा होता है, जो संबंध संपर्क में आने वाले भी उसका अनुभव करते हैं और सामने वाले को बात करने का जैसे दिल करता होगा, है ना। कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने अगर हमारे से अच्छा अनुभव किया है तो अपनी बात को कहीं दूसरी जगह नहीं बताएंगे, वो जहां उसको हल मिलेगा वहीं आके बताएंगे। तो हम अपने संबंध संपर्क में आते हैं, अपने सेवा क्षेत्र में कहीं भी है, तो हमको ऐसा नहीं कि योग केवल उसी में, लेकिन 24 आवर हमारा जो है जीवन योग युक्त होना चाहिए। तो इस बात पर भी हमको ध्यान रखना है। तो कुछ एक बातें थी कि जो हम अपने जीवन को सरल बना लें, पुरुषार्थ को सरल बना लें, नेचर को सरल बना लें, उसके ऊपर एक चिंतन था। तो फिर हम इनको रिपीट कर लेते हैं। तो बाबा ने तो इसमें बताया कि तो एक ऑलराउंडर बनना है, इसमें हमारी कमाई होती है और पुरुषार्थ हमारा सरल हो जाता है, हिम्मत नहीं हारनी है, निरंतर आगे बढ़ता रहना है। और कुछ एक बातों जी बातों का जो चिंतन किया था, तो एक ये था कि दोहरा व्यक्तित्व ना हो हमारा, अंदर बार स्पष्ट हो, है ना। तो इस पर भी हमको ध्यान रखना है, नहीं तो अगर दोहरे व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब विश्वास करने के बाद अगर उस बात पर हमने विश्वास कर लिया और कर्म कर दिया तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है। तो इसलिए लंबे समय तक हम अगर उस पर चिंतन करते हैं और दोहरे व्यक्तित्व से मुक्त रहते हैं तो भी हम सहज पुरुषार्थी बन सकते हैं। और दूसरी बात बताई अहंकार, जो अहंकार का परछाया पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, उसको हमको नष्ट करना है। तो अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए खुद ही हमें अपने रास्ते तलाशने होंगे कि किस तरीके से मैं इन रास्तों से मुक्ति पा सकता हूं। और व्यर्थ का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, अगर नहीं तो सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक भी खिड़की खुली रहेगी तो व्यर्थ की धूल आंधी आएगी और सवेरे देखेंगे तो कमरे में क्या होगा। तो उसी तरह मन के कमरे में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों का तूफान, वो हमारे मन को कहीं मैला तो नहीं कर रहा है ना। सोचा था साफ ही होगा लेकिन जब पता चला तो अंदर तो धूल ही धूल है, तो सारा पुरुषार्थ हमारा पानी में बह गया। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट इसी के साथ रिलेटेड चौथा है, श्रेष्ठ चिंतन के आंदोलन को तेज करना होगा। चिंतन हमारा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों चिंतन को ग्रहण लग गया हुआ है, क्यों हमारा धक्का नहीं लग रहा है, कहां रुकावट आ रही है, उसका कारण क्या है, वो हमको खुद ही तलाशना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट है पांचवा, कोई भी सेवा मिले मौका छोड़ना नहीं है, मौका नहीं छोड़ना है, वो कोई भी सेवा मिले जितना हो सके करना जरूर, क्योंकि सेवा में बहुत कुछ सिखाती है, हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाती है, ना केवल बढ़ाती है बल्कि हमारे पुरुषार्थ के मार्ग को के द्वार भी खोल देती है, वो सहज कर देती है, आसान कर देती है। और नेक्स्ट छठा है समत्व दृष्टिकोण, सबके प्रति अपनेपन की भावना, हम सब एक पिता के बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, तो आपस में किसी के प्रति नफरत बैर विरोध की भावना क्यों, लेकिन लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद। और नेक्स्ट है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनना, हर बात को हमको सहन करने का, दिन प्रतिदिन अपने अंदर वो सहन शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि बाबा ने अंत में बोला जो अनेक प्रकार के पेपर आएंगे उसमें एक है अपने स्वभाव संस्कार और दूसरे के स्वभाव संस्कारों का पेपर। कई बार देखते हैं लंबे समय से पुरुषार्थ ठीक चल रहा होता है तो जो सामने वाला दोस्त भी होता ना उसके मुख से भी ऐसा बोल निकलता है जैसे जिंदगी में कभी सुना नहीं हो उनके मुख से, तो वो दिल को जैसे भेद देता है। तो मन को जैसे एक स्टील की तरह बनाना है, ऐसा नहीं कुछ भी किसी ने कहा तो बस वो नर्म दिल कभी कि जमुना गंगा सरस्वती बहेगी, चाहे आंखों से नहीं बहेगी लेकिन मन से बह रही है। तो मन को बड़ा स्टील की तरह बनाना पड़ेगा, चिकने गड़े की तरह, गड़ा टूट भी सकता है लेकिन स्टील ठीक है। और सादगी प्रिय, जीवन में सादगी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट संकल्पों और वाणी पर संयम, कर्मों पर भी, अगर संकल्प वाणी पर करेंगे तो कर्मों पर स्वयं संयम हो जाएगा। और हिम्मत नहीं आनी है इस पुरुषार्थी जीवन में, चाहे हम इस दुनिया में हैं या चाहे उस दुनिया के संबंध संपर्क में आते हैं, हिम्मत किसी भी सूरत में हमको हारनी नहीं है, कदम हमेशा हमारे तेज होने चाहिए। और नेक्स्ट है 11वां पवित्रता के तेज को बढ़ाना है। पवित्र संकल्पों का भोजन अधिक से अधिक हमको स्टोर करके रखना है ताकि इसमें प्रभु काम में आए। और नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना, किसी को तुरंत इग्नोर नहीं करना किसी भी बात में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नेचर, जो भी हम संगठन में रहते हैं तो एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत आजकल जैसे गर्मी चलती है तो गर्मी में किसी को पंखा चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है, तो दोनों में सहन करना पड़ेगा, एक बंद करता दूसरा चालू करता है। तो अपने को उसी अवस्था में डाल देना है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। हमको यह हमको गर्मी बहुत सहन नहीं होती है, लेकिन पंखा दूसरा कोई बंद कर देता तो हम कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया, कोई ठीक है कोई बात नहीं होने दो, और फिर दोबारा कोई चला के भी नहीं जाएगा, उसको भी चला दो भी। तो ये वो भी हमको सीखना मिलता है कि गर्मी सर्दी निंदा स्तुति लाभ जानी सब में एक समान स्थिति हमको बनानी है। तो एक एडजस्टमेंट नेचर और विस्तार से मुक्ति, विस्तार में ज्यादा जाने की अभी वो समय नहीं रहा वास्तव में देखा जाए तो। विस्तार में बहुत चले गए, विस्तार में जाने से तो हमारे पुरुषार्थ के कदम लड़खड़ाते हैं। और लास्ट में है अपने जीवन को योगयुक्त बनाना है। तो ये कुछ एक बातें थी जो हमारे जीवन को नेचर को इजी बना सकती हैं, हमारे पुरुषार्थ को सरल बना सकती हैं। अगर हम स्वयं सरल पुरुषार्थी होंगे तो ही दूसरों को सरल पुरुषार्थी बना सकते हैं, नहीं तो अगर हमारे पुरुषार्थ में मानसिक स्थिति डावाडोल हो रही है तो दूसरों को भी कैसे देंगे उसका। तो ये कुछ चीजें सी जिस पर हमको विशेष रूप से कदम कदम पर ध्यान रखने की जरूरत है ताकि हम इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सके। ओम शांति।